Namaskar and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, being Sunday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. Well, you may call us on the numbers 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra.
धन्यवाद लालिमा और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
जी धन्यवाद.
पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा.
Thank you, Subodh. Yes, the headlines, friends. Domestic markets to focus on outcomes of monetary policy meets in the US, UK and Japan, and US GDP data for Q's next week. Foreign investors pump in nearly 28,000 crore rupees into the Indian capital markets in the first 2 weeks of December. And public sector banks record highest ever aggregate net profit of around 1,41,000 crore rupees in the last fiscal.
अगले हफ्ते देश के बाजारों का फोकस रहेगा अमेरिका, ब्रिटेन और जापान में मौद्रिक नीति की बैठकों और अमेरिका के जीडीपी के आंकड़ों पर. इस महीने के दो शुरुआती हफ्तों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 28,000 करोड़ रुपए का निवेश किया और पिछले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 1,41,000 करोड़ रुपए का अधिकतम कुल शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है.
After four consecutive weeks of positive sentiments, domestic markets will focus on Fed interest rate decision, Bank of England and Bank of Japan's monetary policy meetings, US GDP for further direction next week. Both domestic benchmark indices Sensex and Nifty gained nearly 0.5% last week. Globally, all investors will focus on the US Federal Reserve's last policy meeting of the year scheduled on December 19. Most experts are anticipating a 25 BPS cut in interest rate next week. Furthermore, the commentary on growth and inflation and indication for number of cuts by the Fed in the coming year 2025 will also be keenly watched. The focus will also be on the US GDP numbers for the third quarter the same day. In the last two quarters, US economy grew at 2.8% in September quarter against 3% in June. Bank of England and Bank of Japan are also going to hold monetary policy meetings next week on the same day. Both central banks are expected to hold interest rates. Inflation numbers for November from Europe, UK and Japan will also be watched next week. The primary market action will also be closely watched as six main board and three SME IPOs will hit the Dalal Street next week. More discussion on this later. For the moment, we have Sneha, we have with us Ayan calling us all the way from Bengaluru. Yes, Ayanji, please ask your question.
ओके, थैंक यू वेरी मच मैम. मेरा बहुत बहुत नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम को. मेरा नमस्कार स्नेहा जी को भी.
जी नमस्कार.
मैम, मेरा दो सवाल है. एक तो अगर आज के डेट में मैं जो म्यूचुअल फंड में जो भी मैं निवेश करता हूँ वो लंबे अवधि के लिए करने की सोच रहा हूँ, आने वाले 15-20 साल के लिए, तो क्या उसमें मोमेंटम और अल्फा फंड में निवेश किए जा सकते हैं, इसमें मैं आपका राय जानना चाहूंगा. और दूसरा सवाल यह है मैम, किसी भी फंड के एनएफओ में इन्वेस्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स रहता है और क्या यह रिकमेंडेड है. थैंक यू मैम, मेरा ये दो सवाल है.
जी, तो आपके एक्चुअली दोनों सवाल एक तरीके से लिंक्ड है, बिकॉज जो आपने फंड्स बताए मोमेंटम बेस्ड और अल्फा बेस्ड फंड्स, ये फंड्स खुद में काफी नए हैं, माना ये एकदम नई ऑफरिंग्स नहीं होंगी जो एनएफओ जिसके लिए स्टैंड करता है न्यू फंड ऑफर, बट मोमेंटम और अल्फा जैसे जो फंड्स हैं वो एम करते हैं कि आप उन स्टॉक्स में पैसा डाले एक फंड के माध्यम से जो आगे बढ़ते ही रहेंगे, मतलब जो अभी भी बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते ही रहेंगे। तो इन फंड्स का क्या रहता है कि ये वाली जो स्ट्रैटेजीज हैं इन्होंने अभी तक जो मार्केट के साइकल्स होती हैं वो नहीं देखी हुई हैं, इनको बैक टेस्ट जरूर करा जाता है जब एक नया फंड आता है तो, बट वो जो एक रियल मार्केट साइकिल होती है वो इन्होंने नहीं देखी हुई है। अब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करी थी कि आप एक लंबी अवधि पे फोकस्ड हैं, विच इज 15 to 20 years, जो कि काफी अच्छा पीरियड रहता है निवेश करने का, और ऐसे टाइम के लिए आप जरूर अगर चाहें तो थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट मोमेंटम और अल्फा टाइप के फंड्स के में कर सकते हैं, बट इन पे पूरा डिपेंडेंस नहीं रहनी चाहिए। आपका जो सरप्लस है वो कुछ कोर स्ट्रैटेजीज जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड या फिर लार्ज कैप फंड्स या अलग से मिड और स्मॉल कैप का लगभग 20% एक्सपोजर, ये सब बनाकर आपका कोर बनना चाहिए, जिसमें जो एक सप्लीमेंट्री होता है जो आप मान लीजिए कि 30-40%, क्योंकि आप 15-20 साल के लिए कर रहे हैं, उसमें आप मोमेंटम और अल्फा फंड्स को थोड़ा सा एक्सपोजर डेफिनेटली दे सकते हैं। अब एनएफओ में बेनिफिट क्या रहता है इन्वेस्ट करने का, तो ये काफी बड़ा मिथ है कि जब आप किसी नए फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो कोई स्पेशल फायदा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली देखा जाए तो सच्चाई ये रहती है कि वो फंड ने, जैसे मैंने अभी बताया, कोई मार्केट साइकिल देखी नहीं है, तो कोई परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिसके बेसिस पर आप ये जज कर पाए कि ये अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। तो ज्यादा बेहतर यह रहता है कि किसी फंड का अगर ट्रैक रिकॉर्ड है, फंड मैनेजर है जो किसी तरीके से उन्हें मैनेज करता आ रहा है, उन्होंने मार्केट साइकिल्स में कैसा परफॉर्म करा है, इस सब के बेसिस पे एक अनुमान लगाया जा सकता है और फिर फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है।
जी, अगले कॉलर है दिल्ली से योगेश। योगेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
थैंक यू सो मच। माय क्वेश्चन इज दैट वी ऑफन हियर अबाउट Brent crude price sometime increase, sometime decrease. So how this paint sector, I'm specifically asking what the paint sector is linked with the crude oil prices. Is the price decrease in crude oil is a good news for the paint sector or is it a bad news? Second, my question is for the price earning multiples. So whenever we, because I want to be a value investor in future, so how we should see PE levels to consider if it is a good buy or not, because sometimes a very low PE is indicating it's overvalued and sometimes very high PE indicating it is still not overvalued.
जी योगेश जी, आपका जो क्वेश्चन है काफी स्पेसिफिक स्टॉक्स और सेक्टर के बारे में है, तो मैं इस पे आपको कुछ जानकारी नहीं दे पाऊंगी। बस मैं एक चीज ये बता सकती हूँ, आप जो कह रहे हैं कि आप वैल्यू इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड रूट के तरीके से अगर आप जाना चाहते हैं तो वैल्यू स्टाइल को कुछ फंड मैनेजर्स फॉलो करते हैं। कैटेगरी है जो स्पेशली इसके लिए बनी हुई है, जहां पे कुछ काफी बड़े फंड मैनेजर्स जो वैल्यू इन्वेस्टिंग कब से प्रीच करते आए हैं वो अपने फंड्स में उसको अप्लाई करते हैं, जैसे कि ICICI का वैल्यू डिस्कवरी या पराग पारिक के भी फ्लेक्सी कैप फंड है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग पे बेस्ड है। अगर आप म्यूचुअल फंड के रूट से वहां जाना चाहें तो ऐसे फंड्स को आप देख सकते हैं।
All right, we are now joined by Jitendra calling us from Jaipur. जी जितेंद्र जी, सवाल पूछे।
हाँ, थैंक यू मैम। अच्छा मैडम, जैसे गोल्ड हमको लेना है, मान ली तो डीमैट अकाउंट है तो ETF भी ले सकते हैं, गोल्ड ETF, और किसी म्यूचुअल फंड हाउस से हम क्या नाम है वो डायरेक्ट प्लान में वो भी ले सकते हैं, उससे भी ले सकते हैं, तो कौन सा दोनों में ठीक रहता है, कौन सा दोनों में सस्ता पड़ता है?
जी, तो गोल्ड जैसे SGB सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स बेस्ट तरीका रहता था गोल्ड खरीदने का, वो आपको 2.5% एक्स्ट्रा दे देता था अलॉन्ग विद जो गोल्ड में बढ़ोतरी हो रही है। बट जो अब दो तरीके म्यूचुअल फंड रूट से रह गए हैं वो एक गोल्ड ETF है जैसे आपने मेंशन करा, जो दूसरा तरीका है मुझे समझ नहीं आया आपने बोला क्या, बट वो दूसरा तरीका गोल्ड FOFs के थ्रू है। ETFs और FOF में फर्क बस यही हो जाता है कि ETFs जो है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं तो उनके लिए आपको एक डीमैट और जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है. और एफओएफ जो होते हैं उनमें एक फायदा रहता है कि आप म्यूचुअल फंड रूट के तरीके से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप उनमें एसआईपी कर सकते हैं. बस मैं एक पॉइंट ये मेंशन करना चाहूंगी कि गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा जगह ना देकर आप एक 10-15% का एलोकेशन दे सकते हैं बट आप इक्विटी और डेट एसेट क्लासेस के माध्यम से लंबे समय में इन्वेस्ट करिएगा.
इज एसजीबी अ गुड आइडिया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, बिकॉज विच द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन आउट रिसेंटली बट सम टाइम बैक.
एंड समटाइम्स बैक दे डिड एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. बट द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज न्यू ट्रांचेस आर नॉट कमिंग अप, द वंस दैट आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस आर एक्चुअली ट्रेडिंग एट अ लॉट ऑफ प्रीमियम बिकॉज ऑफ द डिमांड सप्लाई डायनामिक्स. सो जनरली वहां पे प्रीमियम से है, दैट इज वाई मे बी गोल्ड ETFs और FOFs may be a better route. नहीं तो you'll be spending a lot more than you could have achieved if fresh issues would coming in.
Any tax reduction benefit you get with SGB? I just ask often.
Yeah. So if you hold them for maturity, no capital gain tax is
right.
applicable.
So that's one way of government encouraging you to invest in SGB. Right.
Lalima, एक और बात थी जो स्नेहा ने बताया कि जो श्रोता ने जो सवाल किया था उसके जवाब में इन्होंने जो आखिरी बात कही थी और जो बात आप उसके बाद पूछ रही थी, दोनों को मिलाकर बात यह है कि गोल्ड में आप अपने पोर्टफोलियो का 10-15% से ज्यादा निवेश ना करें, और अगर करना हो तो फिर ये सारे ऑप्शंस हैं.
बिल्कुल
जी. अगले कॉलर हैं दिल्ली से यशपाल. स्वागत है यशपाल, सवाल पूछे.
गुड इवनिंग टीम मार्केट मंत्र. माय क्वेश्चन इज इफ ए पर्सन इज रिटायर्ड रिसेंटली एंड ही हैज वन शेयर कॉर्पस टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड ही इज हैविंग ए गुड पेंशन आल्सो, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3-5 years. सो व्हाट शुड बी द प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड whether it is advisable to invest through lump sum method and also some corporate bonds also for fixed income interest. Thank you.
Okay. I'm presuming this 1 crore surplus that you're wanting to invest in mutual funds is excluding your pension, and let's assume your pension is taking care of all of your other expenses. So this 1 crore can stay invested and you don't really have a regular income generation requirement out of this. Now, keeping this in mind, with this 1 crore, you can actually take some level of equity exposure. Generally, we say if you have regular income generation as a goal, then you can limit your equity exposure to, let's say, around 30%. But given that pension is already taking care of your daily income or expenses requirement, in that case, maybe you can get a little bit more on the risk taking side and let's say invest of about 50%. But the equity exposure can maybe be invested in funds like FlexiCap, more so because they have a larger large cap orientation to their portfolio, but they also get you the mid and small cap exposure, although to a limited extent. Now, with the rest of 50%, you can actually look to invest in debt funds, like you were mentioning, corporate bond funds. You can look at categories like short duration or corporate bond funds. And if I have to, let's say, give you a few names so that it becomes easier for you to start investing, then on the equity side, maybe you can look at funds like Franklin FlexiCap, Parag Parikh FlexiCap, HDFC FlexiCap. And then on the debt side, there can be funds like Axis Short Duration, HDFC Short Duration. You can simply look to divide your 1 crore between these kind of funds. And your point being on investing in lump sum or SIP, then since it might have taken, you know, a lot of your hard-earned effort to ये जो 1 crore आपने कमाया है उसके लिए आपको काफी मेहनत लगी होगी, तो ये 1 crore एक साथ ना इन्वेस्ट करके धीरे धीरे करिए, बिकॉज आप मार्केट लिंक सिक्योरिटीज में इन्हें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. और मैं एक सुझाव ये भी देना चाहूंगी कि आप जब ये फ्लेक्सी कैप टाइप के फंड्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा हायर रिस्कियर हो सकता है, तो फिर आप ये अलग अलग इक्विटी और डेट में ना करके इक्विटी सेविंग्स जैसे फंड्स में भी कर सकते हैं, जो आपका 30% का टाइप का एक्सपोजर इक्विटी डेट में इन्वेस्ट अपने आप कर देते हैं. तो ऐसे भी दो फंड्स जो रहेंगे आप देख सकते हैं, एक्सिस का इक्विटी सेवर, मिराए का इक्विटी सेविंग्स एंड कोटक का इक्विटी सेविंग्स.
In other words, don't put all your eggs in the same basket, in one basket.
Absolutely.
All right, we are now joined by Mohan calling us from Gwalior. Ji Mohan ji, apna sawal puche. Ji.
Arkit Madra team ko meri aur se namaskar.
Namaskar. Ji ji.
Madam se mera sawal hai ki asset allocation ke upar margdarshan kare, usse practically kaise exercise kare, aur usme kya gold ko bhi agar include karna ho, to kuch uske upar mein apna margdarshan de. Dhanyawad.
जी तो एसेट एलोकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल हो जाता है, क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं और मान लीजिए इक्विटी मार्केट बढ़े जा रही है तो आप शायद उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते रहेंगे, और मार्केट क्योंकि बढ़ रही है तो आपका उसमें एक्सपोजर बढ़ता ही रहेगा. अब ऐसे समय में मान लीजिए आप इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, वो जो एक ग्रीड फैक्टर आ जाता है उसकी वजह से, और एकदम से एक रुकाव के तरीके से मार्केट 10% गिर जाती है. अब आप इतना ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्टेड थे कि आपके पैसे एकदम से ही काफी ज्यादा गिर जाएंगे, और तब वो जो डर लगता है, वो डर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसी को एक्चुअली एसेट एलोकेशन कहते हैं. कि आप स्टार्ट ही अपना एक सोच के करिए, अपने गोल्स को देख कर करिए कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ 40% हमेशा ही डेट में रखना चाहिए, नहीं तो मैं ज्यादा जब डाल देता हूँ इक्विटी में तो मेरा डर बढ़ जाता है. तो अगर आप मान लीजिए आप ये 60-40 का रेशियो लगाकर स्टार्ट करते हैं, अभी मैं इक्विटी और डेट की ही बात कर रही हूँ, तो जैसे ही कुछ मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रही है और एक फियर बढ़ रहा होता है कि अब यहां से गिरेगी, उस फियर को कंट्रोल करने के लिए आप ऐसा देख सकते हैं कि मार्केट बढ़ रही थी, कि अगर ये आपका 60% जो इक्विटी था, क्या ये 70 पहुंच गया है, 75 पहुंच गया है, 80 पहुंच गया है, तो आप एक ऐसे मतलब इसका कोई एक साइंस नहीं होती है, बट एक थम रूल के तरीके से हम लोग ऐसे कहते हैं कि आप देख सकते हैं कि जब 5-10% आपके ओरिजिनल एसेट एलोकेशन से मतलब इक्विटी या डेट का एक्सपोजर बढ़ जाता है, तो उसको प्रून डाउन करने के लिए आप उसी टाइम ये एक्शन ले सकते हैं कि थोड़ा इक्विटी से निकल के आप डेट में शिफ्ट हो जाइए. जहां तक बात गोल्ड की है, तो जैसे हम अभी पहले चर्चा कर रहे थे कि गोल्ड को मेन एसेट क्लास ना बना के आप उसमें 10% रख सकते हैं, और आप इन अ स्टेडी स्टेट वही उतना ही रख सकते हैं. जनरली गोल्ड की बढ़ोतरी उस तरीके से नहीं हो जाती है जैसे हमने पिछले समय में देखा है, बट जनरली आप 10-15 उसमें रख सकते हैं, और बाकी जो आपकी इक्विटी और डेट हैं उनमें एलोकेशन कर सकते हैं. एक और तरीका हो जाता है जहां एसेट एलोकेशन ऑटोमेटिकली होती है, वो टाइप के फंड्स हाइब्रिड फंड्स हो जाते हैं, जहां पे हमें खुद नहीं करना पड़ता है. और ऐसे फंड्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं जैसे अग्रेसिव हाइब्रिड है, वो 65% इक्विटी में रखेगा ही, 35% डेट में रखेगा ही. ऐसे टाइप के फंड्स को भी देखा जा सकता है. अगर हम खुद अपना वो डिसिप्लिन माइंड में नहीं बना पाते हैं एसेट एलोकेशन का, तो ये कुछ फंड्स हैं जो हमारे लिए कर देते हैं, और ये टैक्स एफिशिएंट भी रहते हैं, क्योंकि ये जब फंड के अंदर ये सारे लिमिट सेट हो रही होती हैं तो एज एन इन्वेस्टर हमें कोई टैक्स नहीं लग रहा होता है.
जी, अगले कॉलर है पटना से संदीप. संदीप स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
जी नमस्कार मार्केट मंत्रा जी, मैं नमस्कार स्नेहा मैम को भी.
नमस्ते.
मैं मेरा प्रश्न ये है कि यदि मैं लंबी अवधि के लिए 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूं तो कैसा रहे, क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट ये बताते हैं कि स्मॉल कैप फंड में ज्यादा अपना पोर्टफोलियो नहीं रखना चाहिए, किंतु मैंने जो थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है तो मैंने देखा है कि लंबी अवधि में स्मॉल कैप कहीं ज्यादा मिड कैप और लार्ज कैप से अधिक रिटर्न देते हैं, फिर भी अवॉइड करने के लिए क्यों कहा जाता है.
जी संदीप जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्मॉल कैप लार्ज और मिड से ज्यादा ही रिटर्न देते हैं. वो इसलिए है कि जैसा इनका नाम है कि ये अभी छोटे हैं, जैसे ही ये ग्रोथ दिखेगी इन कंपनीज में, इन बिजनेसेस में, तो लंबे समय में इनमें जो प्रॉफिट्स होंगे, जिसका एक हिस्सा हमें मिलता है इनमें इन्वेस्ट करके, वो ज्यादा होगा. बट आप जो कह रहे हैं कि आपने एनालिसिस करें, आई एम श्योर आपके एनालिसिस में ये भी आया होगा कि जब 2008 जैसे टाइम पीरियड्स आए थे तब यही स्मॉल कैप थे जो लार्ज कैप से ज्यादा गिर गए होंगे. तो अगर आप कैलेंडर ईयर रिटर्न्स देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर पता चलता है कि कैसे कुछ समय में स्मॉल कैप एकदम जूम करके 80% दे देते हैं, बट वो 80% गिर भी सकते हैं. तो आप बिल्कुल इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये जो एक टेम्परमेंट माइंड में चाहिए होता है ना कि ये उतार चढ़ाव आप सहन कर पाए, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग ये बोल पाते हैं जो मार्केट में है कि आप अपना सारा पैसा इनमें नहीं डाल दीजिए, आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करिए और एक ही स्मॉल कैप में ना डाल के आप 2-3 स्मॉल कैप्स में डिवाइड करिए. बट फिर भी जो आपका एक लेट्स से एटलीस्ट 70-80% पैसा हो जाता है वो लार्ज और मिड में ही समटा रहे तो वो ज्यादा बेटर रहता है. बट अगर आप अग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं और आप ये समझदारी रखते हैं तो आप डेफिनेटली इनमें ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं. पॉइंट यहां पर ध्यान रखने वाला यही है कि आप 7 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टेड रहें और कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते रहें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के थ्रू.
और वैसे भी हम हमेशा कहते हैं कि पैसा आपका है, फैसला आपका है.
बिल्कुल
अच्छा स्लोगन है. ऑलराइट, वी नाउ जॉइंड बाय देव फ्रॉम दिल्ली. यस देव, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन.
नमस्कार जी.
नमस्कार जी.
हाँ जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे कि हम विदेश जाते हैं तो हम विदेश से जो गोल्ड है कितनी मात्रा में हम एक नंबर के माध्यम से ला सकते हैं, जैसे जेंट्स सुना है जेंट्स 10 ग्राम और लेडीज 40 ग्राम तक ला सकती है. दूसरा सवाल ये है कि गोल्ड की रेट प्राइस है हमारे देश में कौन फिक्स करता है और म्यूचुअल फंड के मैनेजर को कौन सिलेक्ट करता है कि म्यूचुअल फंड के मैनेजर ये है और इनकी देखरेख में सारे काम होंगे.
देव जी, जो आपका पहला प्रश्न है, आई एम सॉरी मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. एंड एक्चुअली जो आपका दूसरा प्रश्न है उसको भी मैं शायद डायरेक्टली आंसर नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है. बट जहां तक आपने पूछा कि फंड मैनेजर को कौन सिलेक्ट करता है, तो ये जैसे अगर कोई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी हैं उनके अंडर म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं जिनके अंडर जो भी यू नो रिसर्च डोमेन से लोग आए हुए होते हैं वहां पे एम्प्लॉयड होते हैं, उनमें जिनमें ये कैपेबिलिटी दिखती है कि वो फंड मैनेजमेंट में आ सकते हैं उनको फंड मैनेजर बनाया जाता है. अब ये विद इन द एएमसी होता है कि कौन इक्विटी देखता है कौन डेट देखता है, जिसका जो प्रोफेशन होता है उसके अकॉर्डिंग या जहां उनकी ज्यादा समझ होती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें ये रोल मिल जाता है.
जी, मैसूर से देसाई हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
नमस्ते नमस्ते मार्केट मंत्री.
नमस्कार
सर, मेरा ये डाउट था कि व्हेन वी अप्लाई आईपीओ थ्रू यूपीआई फोन पे ऐसा कुछ ब्लॉक जो करते हैं हमने पैसे, उसमें अलॉटमेंट चांसेस बहुत कम रहता है, ये मैं किधर भी पढ़ा. एंड इट्स बेटर यू गो थ्रू आसबा थ्रू बैंक सो दैट यू गेट गुड बेटर चांस. आपका राय क्या है सर?
जी इस पर हम माफी चाहेंगे क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम सिर्फ म्यूचुअल फंड पर फोकस्ड है और हम इसी से जुड़े हुए सवाल लेते हैं. आप इस तरह के सवालों के लिए हमें शनिवार को और सोमवार को फोन कर सकते हैं.
कल है सोमवार, कल बात यही सवाल पूछ
जी, सकते जी, जी जी अगले कॉलर के पास चले लालिमा.
जी 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 यस बोथ. वेल वी आर नाउ जॉइन बाय गौरव कॉलिंग अस फ्रॉम गाजियाबाद. यस गौरव जी, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन.
Madam, just one question about fixed income. It is important to have fixed income in our portfolio. So equity arbitrage fund versus debt fund, short-term debt funds, which are more advisable from return point of view and tax point of view, because normally we park short-term money either in liquid or short-term funds so that we can switch to equity whenever there is an opportunity or a drop in the Sensex or whatever market values of any particular sector of stocks. So arbitrage and versus equity arbitrage versus short-term fund, which can you give us simple analysis and detailed information so that we can select any one of them from our investment point of view. Thank you.
Right. So Gaurav, when you started out asking the question, you touched upon a very critical aspect of having fixed income in your portfolio. So I would like to highlight one thing before I list down the comparison between the two kind of categories. The point being that when you invest in fixed income, return generation is not really the perspective with which we invest in fixed income, because what fixed income gets you is something more important than the returns. It is the stability that it adds to your portfolio. So capital, preserving your capital is more important than, you know, the generating returns out of fixed income. To achieve a return generation goal, you might as well go to equity asset class, because there the payoff of, you know, taking a higher risk for more returns is mostly what equity gets you, not really fixed income. Now, the question you asked is a very pertaining question these days, because since the removal of indexation benefits from debt funds, people are actually asking, you know, the comparison there lies between stability of debt funds versus the tax efficiency of hybrid funds like the arbitrage funds that you mentioned. So the difference between the two definitely is that equity arbitrage category gets you equity like taxation because of SEBI mandate. It has to invest or it has to have 65% gross exposure to equity. While in case of debt, since the new budget came in, they are now taxed at your added to your income and taxed at your slab rate. But debt funds do have a role to play in your portfolio because arbitrage funds can get a tad riskier than debt funds for shorter time periods, let's say 3 months, 6 months. And the benefit that arbitrage fund gets you is more broadly pertaining to, let's say, higher tax slab individuals, because the returns are basically alike when it comes to debt funds and arbitrage funds. Debt funds here being categories like, let's say, short duration funds. So you can go with either of the two, but arbitrage would be more volatile, I would say, in short time periods because they try to gain from the mispricing opportunities in the market. So there can be a higher volatility jo aapko debt funds mein nahi milti hai. So let's say if you are an individual with a tax slab of 20% and above, maybe arbitrage funds can be beneficial, but debt funds do get you a peace of mind, so they still have a role to play.
अगले एक खबर पर नज़र डालते हैं. दिसंबर के दो शुरुआती सप्ताहों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 28,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है. ताज़ा आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 22,766 करोड़ रुपए का निवेश किया और ऋण बाजार में 4,814 करोड़ रुपए डाले. इस तरह भारतीय पूंजी बाजार में इस महीने अब तक उनका कुल निवेश 27,580 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. इससे पहले के कुछ महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से तेजी से पैसे निकाले थे. नवंबर में उन्होंने 21,612 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 94,017 करोड़ रुपए निकाले थे. दिलचस्प बात है कि सितंबर में विदेशी निवेशकों ने पिछले 9 महीने का सबसे भारी निवेश किया था जो 57,724 करोड़ रुपए का था. इस साल अब तक विदेशी निवेशक भारतीय पूंजी बाजार में 1,20,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं.
All right, public sector banks, PSBs as we call them in India, have recorded the highest ever aggregate net profit of around 1,41,000 crore in the financial year 2023-24. Meanwhile, the gross non-performing assets GNPA ratio has declined, dropping to 3.12% in September this year. This is a steep decline from the peak GNPA of 14.58% in March 2018. The Finance Ministry revealed that the PSBs have also contributed significantly to shareholder returns, paying a total dividend of almost 62,000 crore rupees over the past 3 years. The ministry hailed this as a landmark achievement and said it reflects the sector's robust turnaround underpinned by a significant improvement in asset quality. It added that this remarkable financial growth underscores the sector's operational efficiency, improved asset quality and stronger capital base.
जी ये अच्छी खबर है. पीएसबी बैंक्स के बारे में अभी शायद ही आकर्षक होने वाले हैं निवेशकों के लिए आगे भी. और वैसे स्नेहा, हम जब एफपीआईज की बात करते जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं दिसंबर में, दो हफ्ते में काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं पिछले कुछ महीनों के अंतराल के बाद. तो अभी जैसे अब हम कह रहे हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और जापान की मौद्रिक नीति, अभी उनकी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड होगी, क्या एफपीआई पर कुछ आगे भी कुछ आशंका हम देख सकते हैं?
जी सुबोध जी, एक्चुअली ये कोई बता नहीं सकता है कि आशंकाएं कैसी रहेंगी एफपीआई या एफआईआई के लिए. तो इम्पोर्टेंट बस ये रहता है आप अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखिए.
जी स्नेहा मार्केट मंत्र में आने और खासतौर पर आज के अंक के लिए जब आकाशवाणी के इन हाउस प्रोग्राम के रूप में मार्केट मंत्र ने अपने 23 साल पूरे कर लिए हैं आज के दिन बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
ऑन अ सेल्फ कंग्रेचुलेटरी नोट लेट्स मूव ऑन टू क्लोज द प्रोग्राम वेल डोमेस्टिक मार्केट्स टू फोकस ऑन आरबीआई एमपीसी मीट ऑटो सेल्स डेटा एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक Coal production jumps to 7.2% to nearly 91 million tons in November, and Sri Lanka records highest deflation in more than six decades. That's all we have for you in this edition of Market Mantra. It's time for us to sign off. Namaskar. Market Mantra.